Market Mantra, Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra, Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Sonu Sood.
धन्यवाद लालिमा. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रों में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम आप तक देश विदेश से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरें लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे. चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रकाश चावला. प्रकाश चावला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में.
शुक्रिया.
और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है लालिमा अनेजा डैंग.
थैंक यू सोनू. यस फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस. वेल, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस एंड विद गेन्स ऑफ ओवर 0.5%. सेंसेक्स सर्जेस ओवर 560 पॉइंट्स. निफ्टी क्लोजेस एट 23,155. कैबिनेट इंक्रीजेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर रॉ जूट टू 5,650 रुपीज पर क्विंटल फॉर मार्केटिंग सीजन 2025-26. एंड ग्लोबल crude oil prices rise. Brent crude trades at $79.51 per barrel.
प्रमुख घरेलू सूचकांक आधे प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 560 अंकों से अधिक बढ़ा. निफ्टी 23,155 पर हुआ बंद. कैबिनेट ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया. और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेजी. ब्रेंट क्रूड $79.51 प्रति बैरल पर. शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक आज गिरावट से उबरते हुए आईटी सेक्टर की अगुवाई में 0.5% की तेजी पर बंद हुए. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.75% की तेजी से 567 अंकों का उछाल दर्ज करते हुए 76,405 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.57% की वृद्धि से 131 अंक बढ़कर 23,155 पर बंद हुआ. दोनों सूचक कांक 0.5% से अधिक की तेजी पर बंद हुए. हालांकि विस्तारित बाजार में आज गिरावट का रुख था. मिड कैप सूचकांक 1.2% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई.
वेल, द स्टॉक्स इन डिटेल नाउ. बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्स रिबाउंडेड टुडे एंड एंडेड विद गेन्स ऑफ ओवर 0.5% लेड बाय इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर. द 30 शेयर इंडेक्स एट द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स सर्ज्ड 567 points or 0.75% to close at 76,405. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 added 131 points or 0.57% to settle at 23,155. Conversely, the broader market indices at the BSE ended in negative territory. The mid-cap index dropped 1.2% and the small-cap index declined over 1.5%. In the Sensex index, 21 out of 30 companies logged gains. Among the top gainers, Infosys surged over 3.1%, TCS gained over almost 3%, and Tech Mahindra added over 2.2%. Meanwhile, in the top laggards, Tata Motors shed over 2.2%, Power Grid lost over 1.2%, and Axis Bank dropped around 1%. In sectoral indices at the BSE, 15 out of 21 sectors ended in positive territory. Among the top gainers, focused IT advanced over 2.1%, Information technology gained more than 1.8% and tech added over 1.6%. Conversely, in the top laggards, realty plunged over 4.5%. Industrials as well as capital goods both dropped more than 1.8% each and power fell over 1.5%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,802 companies declined and 1,142 advanced, while 115 remain unchanged. At the National Stock Exchange, 14 companies hit their 52-week high, while 155 hit their 52-week low. So, Prakash, yesterday after President Trump's no-holds-barred speech, the Sensex tanked to about 75,000. Now it's gained about 567 points to touch 76,000 plus. What led to this fall and what led to this gain?
Well, if you see today's rebound, it is also following a situation where market was found to be in a oversold situation. Oversold technically, because you can't have just one way street. Now, coming to Trump's impact on the global market. So, yes, there was no secret about it that he is going to come up with his and then immediately after taking oath, it was expected, and he delivered what is called the blizzards of executive orders.
Yes,
he did come out with that.
Yes.
And there was not a big surprise, but people are still trying to digest that. And but when it comes to his larger threat of tariff, which he had said, I'll come and immediately announce, he has not ordered yet. He has given an indication that, look, I am going to deal with you. Let's have a deal. So it was a kind of a, what is called, you weaponize a tariff tool.
Yes.
So that's how the market is trying to digest, as the several leadership in several countries, because it's a huge stake.
So Trump ko hamesha ek deal maker mana jata hai, aur ye bhi kaha jata hai ki ye jo tariffs ka jo ek wo kahe ki threat hai wo negotiating tool bhi ho sakta hai. But agar hum specifically India ki baat kare to Bharat ko kitna dar hai in tariffs ka, tariffs lagne ka, Bharat aur US ke jo trade hai usme kitni aisi aapko lagta hai sambhavna hai ki, बिकॉज भारत और चीन बहुत या बाकी देश बहुत अलग, हमारा जो सरप्लस है, जो ट्रेड सरप्लस है भी, वो ऐसे एरियाज में है जो टेक्नोलॉजी इंटेंसिव नहीं है. सो भारत और यूएस का अगर हम सिर्फ बात करें तो भारत को कितना डेंजर है कि टैरिफ्स वॉर शुरू हो सकती है भारत के साथ?
एक्चुअली डेंजर नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि अब, और हमारे संभावना है, पक्की संभावना है कि हमारे जो मिनिस्ट्री में नेगोशिएटिंग टीम्स हैं, जैसे चाहे वो कॉमर्स मिनिस्ट्री हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, और भी कंसर्न मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्री हो, दे आर ऑल कीपिंग देयर आईज एंड इयर्स ओपन व्हाट्स हैपनिंग. एंड आवर ट्रेड, बायलेटरल ट्रेड विद द यूएस, राइट नाउ वी एंजॉय सरप्लस, sizable surplus with the US when it comes to US. With China, we enjoy, China enjoys a lot of surplus. In the US, India enjoys surplus. So there could be some, when it comes to hardcore negotiations, there could be a demand from the US, like, look, at the end of the day, you are having surplus, we need to fix it. और उसको हम कैसे फिक्स करेंगे? तो वो उसमें कुछ एक आइटम्स हैं, जैसे वो चाह रहे हैं कि हमें हमारे भारत में एंट्री मिले कम उसमें, और हमको ये अपने बास्केट देखने पड़ेगी, पूरी बकेट देखनी पड़ेगी, कहाँ हम एकोमोडेट कर. लेकिन कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, ट्रेड विल कंटिन्यू, ट्रेड चलता रहेगा. थोड़ी एडजस्टमेंट, रीएडजस्टमेंट, जैसे एक तरह का नेगोशिएशन, दोनों मुल्कों के अधिकारी बैठेंगे, सब बैठेंगे, दे विल आई एम श्योर वर्क आउट.
तो आज जो हमने देखा है बाजार में, कुछ संभलता हुआ बाजार, स्टॉक मार्केट, आपको लगता है कि वो इनिशियल नीजॉक रिएक्शन के बाद अब बाजार भी इस तरह का एक रियलिस्टिक और थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड ले रहा है?
देखिए, बाजार में ओवरऑल बाजार में पिछले कई दिनों से एक बेरिश मूड है, ठीक है जी, स्ट्रक्चरली बेरिश मूड है, और उसके कई कारण, ट्रंप एक कारण हो सकते थे, और ट्रंप को तो ये लोग मार्केट अब डाइजेस्ट कर ही रही है ना धीरे धीरे. जैसे विंड एनर्जी के बारे में ट्रंप ने बोला जी हम तो फॉसिल फ्यूल पर दोबारा जाएंगे, तो हमारे जो विंड एनर्जी के शेयर्स हैं एकदम से लुढ़क गए. अब क्या है कि ठीक है, ट्रंप साहब ने कह दिया, डजंट मीन कि हम हिंदुस्तान में अपना प्रोग्राम रिवर्स कर देंगे, हम तो बरकरार रहने वाले हैं. कई मुल्कों ने कहा भाई हम तो बरकरार रहने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपना प्रोग्राम थोड़ी शेड कर देंगे. तो ठीक है, अमेरिका की अपनी प्रायोरिटीज, हमारी अपनी है. तो बाजार में कई फैक्टर्स हैं, ट्रंप का एक फैक्टर था,
बाकी कौन से इंपॉर्टेंट
बाकी जो फैक्टर्स हैं, हमारी जो मेन मुद्दा है जिसके चलते काफी एफआईआईज काफी सेलिंग कर रहे हैं, काफी अरसे से काफी आउटफ्लो हो रहा है, और हमारे जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है ना वो मैच नहीं कर पा रहे एक्सपेक्टेशन से, तो थोड़ा डिमांड स्लो डाउन का इशू है, ये सारी चीजें मैक्रो जो पिक्चर्स है मार्केट उसको भी अच्छे से देख रही है, और ग्लोबल इश्यूज हैं जो एफआईआर माल बेच के जा रहे हैं।
प्रकाश जी, 1991 वाज अ काइंड ऑफ टर्निंग पॉइंट बिटवीन यूएस एंड इंडिया एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न, गुड्स ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएस ग्रू ओवर 20 टाइम्स सिंस 1991, येट इंडिया इज नॉट डज नॉट फिगर अमंग द टॉप 10 US trading partners. Probably it's nothing much to worry. And as far as comparison with China is concerned, even if the tariffs are there, you can't compare China with India because India is a different ball game with our kind of exports, as you just mentioned, certain things like textiles, gems, jewelry, and pharma ingredients, which US may not have an edge over because of the high labor intensity. Does that give us an edge?
I'll tell you what. The India-US relations and India-China relations, as you rightly said, are two different ballgames.
Mm-hmm.
When it comes to India-US economic relations, mm-hmm. let's not do goods and trade, goods trade, merchandise trade. Our economic relations depend not only merchandise goods, but also services,
right.
which includes IT services, software. Correct. India is seen as a one of the major IT players, services players in services sector. And we have a huge, but after all, Silicon Valley is dominated by Indians.
Absolutely.
And if you see the swearing in ceremony, if you have seen it, I noticed that the industry was dominated by the tech city, what is called Silicon Valley Tech City. And in this tech city reps, there are a lot of Indians, one would feel. So that kind of position we enjoy. Mm. And I'm sure these chaps are also our good ambassadors. After all, for instance, the whole issue of H-1B visa, H-1B visa is not going to go away. Because at the end of the day, they are going to realize that, look, these talent is important for us.
एक और जो डोमेस्टिक अगर हम फैक्टर्स की बात करें, बजट आने वाला है, अब कुछ ही दिन बचे हैं, सो बजट को लेकर जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनको क्या नॉर्मली कौन से ऐसे केंद्र बिंदु हैं जिन पर उनकी आंखें टिकी होंगी जो स्टॉक मार्केट्स के सेंटिमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, और आपको क्या आशा है?
देखिए, स्टॉक मार्केट बजट का ना बड़ा वो होता है, उनका ना बड़ा नैरो व्यू रहता है, बड़ा ही छोटा व्यू रहता है. उनके एक दो मुद्दे होते हैं, कैपिटल गेन्स, फिजिकल डेफिसिट, ये वो. लेकिन वैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था एक प्रोग्राम में, जो बजट है बड़ा आम आदमी के लिए बहुत बड़ा अहम माना जाता है. आप हिंदी के साहित्य को जानते होंगे, बड़ा नाम है हरिशंकर परसाई का. उनका एक नॉवल है, किताब है, अपनी अपनी बीमारी. और फाइनेंस मिनिस्टर अगर डॉक्टर हैं तो हर सिटीजन जो है वो अपना अपना प्रॉब्लम लेके जाते हैं. उसमें नॉट ओनली शेयर मार्केट होती है, आम नागरिक भी होता है और टैक्स पेयर होते हैं. फिर ऐसे भी तो होते हैं जो चाहते हैं कि हम इतना तरक्की करें कि हम इनकम टैक्स की उसमें आ जाएं. तो मैं हरिशंकर प्रसाई को इसलिए कोट कर रहा हूँ, मैंने अभी उनका पढ़ा वो. तो जो आदमी टैक्स नहीं पे कर, टैक्स पेयर से बाहर है, उसकी इच्छा रहती मैं भी इस लेवल तक आऊँ. तो फाइनेंस मिनिस्टर को एक डॉक्टर बन के सबकी सोल्यूशन देना पड़ेगा, और वो सोल्यूशन अच्छा होगा तो इलाज भी बढ़िया अच्छा.
बिल्कुल बिल्कुल. सो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, रुपए पर पहले नजर डालते हैं. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 25 पैसे की मजबूती से 86.33 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 107.78 पर था.
Well, the government has decided to increase the minimum support price for raw jute for marketing season 2025-26. Briefing media in New Delhi today about the cabinet decisions, Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said MSP of 5,650 rupees per quintal for raw jute will be provided, which is 315 rupees more in comparison to previous marketing season 24-25. He said this will help 40 lakh farm families directly or indirectly dependent on the jute industry. The minister informed that the Union Cabinet reviewed the progress achieved under the National Health Mission. He added that Union Cabinet decided to continue its implementation for another 2 years as decided added earlier. In 2021, Union Cabinet had extended the implementation of National Health Mission for 5 years till 2026. Prakashji, jute is very important because it's used in the packaging industry and is a good replacement for plastic. And in between, somewhere in between, the government had also ordered to replace as much as possible the other plastic packaging with jute. 82% of jute growers in Bengal, a few other states, how significant is the decision of increasing the MSP for the jute growing
MSP
farmers?
Increase on any agriculture products is of critical value. It is not only, as you said, jute, for instance, would replace or is sought to be replacing plastic, which is so prevalent and kind of a threat.
Polluting.
So jute not only would help environment, protect environment, but also gives a lot more, if you increase the MSP, it gives a lot of buying power, purchasing power to the farmers, to the people who are laborers, workforce. And right now, it would also add to the overall demand revival, which is the need of the hour right now. And our demand revival is being looked at from the rural areas. So if you give more money in the hands of farmers, yes, be it jute farmers or paddy farmers or sugarcane farmers, that money is going to come into the circulation and pick up. The expectation is that the demand revival now is going to be led by rural demand.
Right. And in
Shri Piyush Goyal ne jo apna vaktavya diya meeting ke baad, cabinet meeting ke baad, jisme ye faisla liya gaya, to unhone kaha ki 67% profit hai over the jo bhi production cost hai.
Increase.
Ye kitna important hai, wo jo ek formula hai C2+50 ka, wo bhi farmers ke welfare ke liye usko jo follow kar rahi hai sarkar, ye important hai samriddhi ke liye agriculture.
Bilkul important है, क्योंकि फार्मर्स जो है उनको तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना, हम लोगों को जो उनकी कॉस्ट होती है, नहीं तो फिर फार्मिंग करेगा कौन, उनको लिक्रेटिव बनाना पड़ेगा. दो चीजें, एक उनका सर्वाइवल का इशू है, सब्सिस्टेंस फार्मर्स होते हैं, छोटे फार्मर्स होते हैं, उनकी हेल्प करनी, जैसे मैंने जिक्र किया कि उससे डिमांड भी बढ़ती है, उनके हाथ में जब पैसा जाएगा तो खर्च भी बढ़ते हैं, पूरे ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा. और दूसरी जो आपने जिक्र किया कि उनको उनके प्राइस को, बिकॉज मार्केट के जो उथल पुथल का जो कई बार प्रेशर होता है, दबाव होता है, एमएसपी एक ये भी टूल होता है कि मार्केट को स्टेबिलिटी देता है. ऐसा नहीं कि एकदम से मार्केट क्रैश हो जाए या बिल्कुल चढ़ जाए, जो एक स्टेबिलिटी होती है, एमएसपी एक बेंचमार्क भी बन जाता है. सारी प्रोक्योरमेंट जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट ही करे, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करे, प्राइवेट लोग भी करते हैं, फिर एमएसपी बेंचमार्क बन गया तो उसके चलते आपको एक फार्मर्स को प्रोटेक्शन मिलती.
That's right. In fact, to add to the figures, I mentioned 82% of jute farmers in West Bengal. There are 9% of them in Assam and 9% in Bihar. So it'll benefit all these farmers. And it's very interesting, Sonu, if you ever go to these exhibitions, that it's not just bags we're talking about. There are also, Prakashji, jute footwear, jute carrying bags, you know, purses, which are now in vogue these days.
Yes, yes. Jute textile.
Jute textiles, absolutely.
Sustainable economy ke liye bahut important.
In fact, we need to take it at a higher level in terms of fashion, in terms of visibility, brand building. Jute need not be restricted only to packaging material.
Absolutely. In fact, वो भी हो रहा है fashion में. हाँ,
वो और बढ़के हमको global level पे ले जाना चाहिए, क्योंकि अब ये थोड़ी है कि अगर Trump साहब नहीं मानते environment को, हम भी उसके पीछे लग पड़े. हमारा अपना एक है ना, हमको हमारी जो diversity है हमको उसको protect करना है.
बिल्कुल. लेते अगली खबर. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के सदस्यों की संख्या में पिछले वर्ष नवंबर में 14,63,000 सदस्यों की वृद्धि हुई. इनमें 18 से 25 वर्ष तक के नए सदस्यों की संख्या 4,81,000 है. नए सदस्यों में महिलाओं की संख्या लगभग 2,40,000 है. श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार ये वृद्धि रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी, कर्मचारियों के लिए सुविधाओं की जानकारी के विस्तार और संगठन के आउटरीच कार्यक्रम की सफलता के कारण हुई. ये कितना इम्पोर्टेंट है प्रोविडेंट फंड एज अ यू नो बैकबोन फॉर वर्कर्स उनके भविष्य के लिए.
इसमें दो चीजें हैं. एक है कि सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए प्रोविडेंट फंड बहुत अहम है. क्योंकि बेसिकली ये रिटायरमेंट के लिए बना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है ना, जब आप रिटायर हो रहे हैं जब आप, तो उसमें आपके पास कुछ फंड होना चाहिए। हर आदमी तो सरकारी मुलाजिम नहीं है,
और ये इंडिकेशन भी है कि जॉब मार्केट बढ़ रही है, जॉब्स बढ़ रही है।
वो दूसरा, मैं दूसरे पॉइंट पे आने वाला था, जॉब मार्केट इकोनॉमी जो है अब काफी ऑर्गेनाइज इसको बोलते हैं, वो हो रही है। तो जब ऑर्गेनाइज होती है अनऑर्गेनाइज से, तो उसमें फिर ये सारी चीजें ज्यादा बढ़ने लगती है। ये भी एक इंडिकेशन है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ काफी स्पीड से बढ़ रही है, जिसके चलते फिर ईपीएफ जो एम्प्लॉयर होगा, अगर वो पहले छोटा व्यापारी था, बड़ा हो गया, लोग ज्यादा आ गए, तो उसको ऑर्गेनाइज में ईपीएफओ भी लगाना पड़ेगा। तो उस तरह से लोगों को फायदा भी मिलता है और इकोनॉमी जो है ऑर्गेनाइज हो रही है।
राइट राइट, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। वेल, इन्वेस्टर रजिस्ट्रेशंस एट द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE हैव सर्ज्ड विद द यूनिक रजिस्टर्ड इन्वेस्टर बेस सरपासिंग 11 करोड़ ऑन द 20th ऑफ जनवरी 2025। द टोटल नंबर ऑफ क्लाइंट अकाउंट्स हैज रीच्ड 21 करोड़। NSE's चीफ Business Development Officer Sri Ramakrishnan said that this milestone signifies a major shift in India's investment landscape, enabling millions to contribute to economic growth and deepen capital markets. It took 14 years to reach the first crore investors, but the last crore joined in just 5 months. Daily registrations range from 47,000 to 73,000, driven by digitization, investor awareness, financial inclusion, and strong market performance. The median investor age is 32, with one in four being women. Leading states in registrations are Maharashtra, Uttar Pradesh, and Gujarat. Indian markets have seen positive returns for 9 years. In 2024, the Nifty 50 returned 8.8%, while the Nifty 500 gained 15.2%. NSE listed companies' market capitalization has grown nearly sixfold, from 73.5 lakh crore rupees in May 2014 to 425 lakh crore rupees today. Prakash, I think this entire data kind of validates the fact that Indians' faith in the market is now is there. The domestic investors' confidence is now stocks is rocket high.
Actually, what has happened after the pandemic, there was a huge surge in opening of demat account. Yes. Lot of retail investors, you mentioned about the median age group age, which is around in the 30s, early 30s, and women getting interested in.
Yes.
So financialization was a big theme in the last few years. So that continues. That's a good story, because when retail investor, when everybody participates in the capital market, then after all, what the capital market is not only for trading. Capital market is a very important resource for raising equity capital.
Yes.
Equity capital, also known as risk capital. People are willing to take risk.
Yes, yes.
People are willing to bet on entrepreneurs.
Yes.
So, and an entrepreneur has a chance to raise his money. So it's a very what is called a virtuous kind of a cycle. And it augurs very well for the country. One hopes that the recent setbacks or the bearish trend in the market does not discourage the investors. They have to hold on.
Yes.
They have to keep their courage, keep their patience. Yeah. Market come, will there'll be bounces, there'll be bouts of ups and downs.
Yeah.
लेकिन ये जो लोग हैं, इनकी ये एक तरह का उनको धैर्य रखना पड़ेगा, ऐसा घबराना नहीं कि मार्केट गिरे।
Courage and faith, if I may add.
Yes.
दावोस में विश्व आर्थिक मंच के पहले दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में 6,25,457 करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। एक ही में इतनी बड़ी निवेश राशि हासिल करने का यह एक नया रिकॉर्ड है। श्री फडणवीस ने कई कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें महाराष्ट्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखर के साथ बातचीत की। टाटा समूह राज्य में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। बहुत ही उत्साहजनक न्यूज है हमारे उद्योग जगत के लिए।
Yeah. And moving on, well, another interesting news on investment. Telangana state secured a 10,000 crore rupee investment deal in the digital sector. Chief Minister A. Revanth Reddy led Telangana Rising Delegation has entered into an agreement with Control S Data Centers Private Limited, a data center solution provider, for establishing an advanced AI data center cluster in the state. An official release stated that the agreement was signed during the World Economic Forum in the presence of Telangana Industries and IT Minister D. Sridhar Babu, along with senior officials and Control S CEO Sridhar P. The AI data center cluster is expected to have a capacity of 400 megawatts, positioning Telangana as a leader in advanced digital infrastructure and to generate around 3,600 jobs. The state industries minister described the project as a milestone.
भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में असाधारण भागीदारी देखी गई है. इस प्रदर्शनी में पहले पांच दिनों में 8 लाख से अधिक आगंतुक और 1,500 से अधिक प्रदर्शक शामिल हुए. ऑटोमोटिव और मोबिलिटी सेक्टर में अत्याधुनिक नवाचार प्रदर्शित करने वाले 6 दिवसीय एक्सपो का आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में समापन हुआ.
And India is making significant strides in solar and wind energy capacity with a commitment of achieving 500 gigawatt of non-fossil fuel-based energy capacity by 2030. With the infrastructural push, the country's non-fossil fuel-based energy capacity has reached 217 gigawatt till the 20th of this month. Data shows that India is emerging as a global leader in clean energy capacity. According to the new and renewable energy ministry, a record-breaking 24.5 gigawatt of solar capacity and 3.4 gigawatt of wind capacity have been added last year. Solar energy remained the dominant contributor to the country's renewable energy growth, accounting for 47% of the total installed renewable energy capacity. Rajasthan, Gujarat and Tamil Nadu emerged as the top performing states, contributing 71% of the country's total utility scale solar installations.
So bahut hi acha hai ki green mobility, green energy ki taraf hamara पूरा ध्यान बरकरार है. और अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का. प्रमुख एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला था. हांगकांग का हैंगसेंग 1.6% की गिरावट पर बंद हुआ. चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.9% की गिरावट आई और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.37% के नुकसान में रहा. हालांकि जापान का निकेई सूचकांक 1.5% से अधिक बढ़ गया और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.1% से अधिक वृद्धि दर्ज हुई. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो वहां दिन के कारोबार में सभी प्रमुख बाजारों में बढ़त का रुख था. समाचार तैयार किए जाने तक जर्मनी के डैक्स में 1.2% से अधिक की बढ़त थी. फ्रांस का कैक 0.8% से अधिक बढ़ गया था और लंदन के फुटसी में 0.4% से अधिक की वृद्धि थी.
While US stocks rose yesterday as investors assessed Donald Trump's first actions as US president and were encouraged that he did not start his second term with blanket tariff increases. Trump did not lay out concrete plans on the universal tariffs and additional surcharges on close trade partners as previously promised, but said he was planning to impose duties on Canadian and Mexican goods by the 1st of February. The Dow Jones Industrial Average surged more than 1.2%. S&P 500 advanced over 0.8% and Nasdaq Composite added over 0.6%. And oil prices, well, they rose today amid softening of the dollar and as traders assessed President Donald Trump's proposed tariffs. Brent crude was trading over 0.2% up at $79.51 per barrel, and WTI crude was also added almost 0.3% to trade at around $76.05 per barrel when reports last came in.
और सराफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.46% बढ़कर 79,970 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी 0.03% बढ़कर 92,390 रुपए प्रति किलो के स्तर पर थी. और एक और खबर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी को भुवनेश्वर के जनता मैदान में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करना है. इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ाना है। ये भारत के अलावा करीब 12 देशों के उद्योगपतियों और निवेशकों की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। 28 से 29 फरवरी तक चलने वाले इस दो दिवसीय कॉन्क्लेव में ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, जापान और कुछ अन्य देशों के निवेशक शामिल होंगे। सो कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, सो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश जी, आप आए और विभिन्न विषयों पर हमें विस्तार से जानकारी दी।
थैंक यू।
And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Well, benchmark domestic indices end with gains of over 0.5%. Sensex surges over 560 points. Nifty closes at 23,155. Cabinet increases minimum support price for raw jute to 5,650 rupees per quintal for marketing season 2025-26. And global crude oil prices rise. Brent crude trades at $79.51 per barrel. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Sonu Sood, signing off. Namaskar.